ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਸਰਵ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਜੈ, ਸਰਵ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਜੈ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਜੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਸੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਡਾਣੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰੋਥਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਵਾਲਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਸਦਾ ਸਾਹਿਬੀ ਸੁਖ ਸੇ ਬਸਿਓ, ਅਮਰਪੁਰੀ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕੀ। ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਸਦਾ ਸਾਹਿਬੀ ਸੁਖ ਸੇ ਬਸਿਓ, ਸਤ ਲੋਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕੀ। ਸਦਾ ਸਾਹਿਬੀ ਸੁਖ ਸੇ ਬਸਿਓ, ਸਤ ਲੋਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕੀ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਭੈ ਤੁਹੀ, ਹੋਰ ਸਕਲ ਬੈਮਾਨ, ਜੀ ਸਾਧੋ ਹੋਰ ਸਕਲ ਬੈਮਾਨ, ਸਭ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬੀ, ਸਭ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬੀ, ਤੁਝ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਭੈ। ਬੱਚੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸੇ ਆਦਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ। ਯੇ ਸਾਮਾਨਯ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਯੇ ਬਾਤੇ, ਕਈ ਸੁਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹਮ ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਖ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਆਖਰੀ ਦੁੱਖ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੋ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਗ ਕੋ ਜੋ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਓ, ਹਮ ਉਸਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਅਭਿਆਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਝੇਲਣ ਕੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਟਾਂਗ ਕੱਟ ਜਾ, ਆਤ ਕੱਟ ਜਾ, ਟੂਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆਸਾ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਬਾਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਔਰ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਕੋ ਜਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ, ਮੌਤ ਕੇ ਲੀਏ ਜਬ ਕਤੀ ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਰੀਰ ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋ, ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ, ਸਾਂਸ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮ ਸਵੈਮ ਜਬ ਮਾਨਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਇਸਤਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮਰੇ ਵੀ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸਾ ਸੁੱਖ ਹੋਗਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਧਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਪੜ ਗਏ, ਵਾਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੋ ਯੇ ਅਭੀ ਹਮੇ ਯੇ ਗਿਆਨ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਐਸੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਆਪਕੋ ਦਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਉਨਹੀਂ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਨਕਰਮੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਉਨਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਅਲਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਮ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਸੁਵਿਧਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਾਰ ਲੈ ਲੇ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 10-5 ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਯਾਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ। ਯਾ ਦੁੱਖ ਕਤੀਏ ਦੁਖੀ ਹੈ, हैंड टू माउथ है, यानी समय पर रोटियां ना मिलती, वो भगवान के लिए जागा कहाँ? उसको सारा दिन रोजगार की समस्या, समस्या पर समस्या रहती है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम थोड़े बहुत सुखी नजर आते हैं, जिस गंदे सुख को हम सुख मान रहे हैं, तब तक हमें भगवान की कति जरूरत नहीं। ये तो ये ज्ञान हो या फिर कष्ट आना शुरू होता जब भगवान याद आता, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर सारा, कबीर दुख में सुमन सब करें सुखमा करे न कोई, और जय सुख में सुमन कर ले तो दुख का एक उपाय। कबीर सुख में सुमन किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो करया नहीं, जब कहर टूटन लग गया चारों तरफ से, कैंसर डिक्लेयर होगी, सांस साबित नहीं आंदा, कई कर्महीन था फिर भी नहीं मानते कि नाम ले लो और भक्ति कर लो, बला ना देखी जाएगी, उनके इतने कर्म कमजोर होते हैं, संस्कार माड़े होते हैं, खराब होते हैं। थोड़े बहुत कष्ट होकर भी यदि परमात्मा की तरफ लग पड़े, चल पड़े, उसका नाम ले ले, तो भी सहारा देना शुरू कर देता था, बड़ा दयालु है। अब भक्ति से सब दूर हो चुके हैं और जो करते हैं वो पिछले संस्कारी हैं, उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने पर लगे हुए हैं। कोई बेचारे पहाड़ों पर जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, कोई पर भी लेने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कोई मंडी बना रखी वहां मत्था टेकने जाते हैं, यानी उनको चाह भगवान की है पर रास्ता ठीक नहीं। अब जैसा आपने प्रसंग सुना कि पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, गरीब गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी सीता जैसी, अपने धर्म कर्म पे साफ सुथरी रहने वाली, संत दूर स्थान। कहते पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, 33 करोड़ जहाँ थे देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84,000 क्षत्र, उनमें एक का संत मिला, वाल्मीकि सुदर्शन जी। उसका कारण क्या था? उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो बच्चों, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, लोक वेद के आधार से साधना करते हैं, उनको न तो सुख होगा और न उनकी गति होगी यानी मोक्ष, और न उनका कोई कार्य सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इन तीन वस्तुओं के लिए, तीन पदार्थ के लिए हम भक्ति करते हैं, घर में सुख हो, शरीर में सुख हो, कार्य सिद्ध हो, ऐसी इस भक्ति करें कि जिसे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके सारे हम ऊपर जावें। जैसे सुखदेव के पास एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, और हमारे परमात्मा कहते हैं जो हम भक्ति दे रहे हैं इसमें 24 सिद्धि आ जाएंगे, इन 24 की 24 को भी कहीं यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना, ये उनमें एक सिद्धि आकाश से उड़ जाने की भी होगी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख जीवे, ये कई कई दिन नहीं खाते पीते तो वो एक सिद्धि होती है। गरीबदास जी कहते 24 को ना मन चावे तो हंसा सतलोक सिदावे। तो कहने का भाव ये है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले हैं, और अमीन जबरदस्त महात्मा मानना थे, ये ऊपर का दिखावा ऐसा गजब का करते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या पता आपको भी पता नहीं था इस ज्ञान के सुनने से पहले, ये साधु हमने भगवान दिखाई देते, पर माथा टेका थे, प्रणाम किया करते, इनको खूब दान भी देते थे। ये पता चला ये डडले डोंगे थे, गरीब डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी जूल, जग जाना ये बंदगी करे, ये वो वसूल। ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं ताकि दूर तो दिखे कि महात्मा तपस्या करे है, या पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्यों लोग भी भटक रहे हैं भगवान के लिए। साधु मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, कर्म बरकत हो जाए, नू हो जाए, नू हो जाए, तो आशीर्वाद लेने जाया करते, और वो जंगलों में साधुओं ने ढूंढा करते, तो वो छोटा मोटा आशीर्वाद दे भी देंगे, थोड़ी बहुत राहत मिल भी गई तो मोक्ष तैनो का नू रह गया। गरीब डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, ये बहु असूल बहुत। बच्चों आपको बताया है, जो उदास एक भी शब्द बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड गिवन है, और परमात्मा ने किसको दिया, अपनी प्यारी आत्मा संत गरीब दास जी को दिया, उनके द्वारा अमर ज्ञान लिखवाया गया है, वो आपको सुना रहा है दास। रग यजू है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। जो परमात्मा का सूक्ष्म वेद पढ़ता है वो सत्संगी है। चारों वेद रग यजु श्याम अथर्व, ये चारों भ्रमित ज्ञान युक्त है, इनसे जीव को कोई लाभ नहीं होना, मोक्ष नहीं हो सकता। तो दास आपको ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है, अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक बाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संघ पंचायन पूरे न दु। एक बाल्मीकि जाति का, जिसको तुम नीचे को मानते थे, वो था साधु, जिसने वो पंचायन संख बजा दिया, और गिनो माया के पुता, ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। ये बाकी ये माया के पुजारी, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर केतक साई, जिनके आगे ये बड़े गदाई, नूरी दीपक धरे चिरागा, काल करंजन को उठ लगे। नूरी अंग विनस है भाई, माटी के किस गिनती भाई। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नूरी शरीर है, हल्का सा नूर का, इन देवताओं का नूरी शरीर है, ये नकली नूर है, असली नूरी शरीर सतलोक में है। काल ने दुर्गा के माध्यम से यहां उस सतलोक वाली सारी डुप्लीकेट वस्तु बनवा रखी है, कति नू क्यों मिलते जुलते स्त्री पुरुष ऐसे ही है, और लेकिन वहां ओरिजिनल शरीर है, बिल्कुल अविनाशी शरीर है। यहाँ कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के नूरी शरीर है, ये नूरी अंग विनसह है भाई, माटी के किस गिनती भाई। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मरेंगे तो ये मिट्टी के जो हमारे हैं तुम्हारे मनुष्य के, ये कौन से खाते में है कि तुम ना मरोगे। और फिर क्या कहते हैं, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई। जिनकी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी की, काल की, तुम आड़ ले रहे हो, शरण लिए बैठे हो, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी कोट ना उभरे कोई। कोई पार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता, यही 84 लाख योगियों पर कष उठाते रहोगे। अब क्या कहते हैं, या तो 56 कोटि सहारे, और करी ठगोरी छन मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पूर्णी, आवे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के अंदर आवेंगे, बच्चों यदि आपको पहले तैयार ना कर रखा होता ना सारे प्रमाण देके, तो आप कति नहीं सुनते। अगले दिन आप कति कान का नहीं लांदे यूट्यूब के चैनल को, जो कहो झूठ बोल रहा है। और आज आपके गीसा गल है कि गजब अजब कति सांची सारी। और ये 300 वर्ष पहले संत गरीबदास ने लिखे कदर गए थे, उन्होंने प्रचार नहीं कराया। उनको पता था किस ग्रंथ में और पाट देंगे, जय ईब गणा प्रचार कर दिया था, आग ला देते इसके पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ओए होए ये जो दिल करता है सुने जावा कितनी गजब की सच्चाई, और पढ़े जावा। देखो बच्चों कितना अंतर हो गया, अज्ञान के कारण हम अपने खजाने ने छोड़े फिरा थे। चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यजक चुकता ढेल रे, हम डले इकट्ठे करा थे डले कंकर शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है, ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती ये बरसन लायक रहे। और सच्ची भक्ति आप क्या बताते हैं, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई इनकी ओट ना उभर कोई, यादो 56 कोटि सहारे करी ठगोरी छन में मारे। अब सुनो, यादो 56 कोटि सहारे करी ठगोरी छन में मारे, 5 तत्व त्रिगुण की पुनी आए बर्मा विष्णु महेश्वर जूनी। देखो काल का जाल कितना भयंकर है। गरीब दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे मची रुद्र की कीचे। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां बरगी वचन की शक्ति आ गई, यादों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने चाणूर मार दिया, कंस मार दिया, जरा सिंह मार दिया, काल्यवन मार दिया और केशी मार दिया, तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती है गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ जंगल होता था, अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष नीम सब गांव के चारों तरफ, ये पहले समझदार व्यक्ति होते थे, और चारों तरफ गाँव के नीम पिपल और बड़ तीन तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे, उनसे ऑक्सीजन गांव में जाती थी, किधर की हवा चलो सारी ऑक्सीजन जाती थी, तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गांव के चारों तरफ होती थी, उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझडे भी होते थे जिनकी आठ में फ्रेश उड़ जाया करते थे लोग, साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके, और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत है, ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था, उनके मन में यह आई भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य ही जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के गए पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी और गुजरिया वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का, 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो कहे थे अच्छे शादी हो रही थी उसकी प्रद्युम्न की भी, तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसके अनिरुद्ध जैसे, दुर्वासा जी से जाकर निकाहे महाराज, आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय है, और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो बेटा होगा बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अगे तो मजा करते तेरा, तो गुस्से में आगे कहने लगा या दो कुल का नाश होगा इससे जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे, सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया यादव कुल का नाश होने का। तो उनको पता था नगरी वालों को श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है, फिर भी दुर्वासा का डर भी गना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाके इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया, दुर्वासा बोला मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे अब सुनते रहियो इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई ने तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर कपड़े उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके, सारा दिन लगे रहे पत्थर पे घिसाएंगे वो चूरा वहीं पडारा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया भाई वो तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं कढ़ाई के वो, और तो घिसा दिए वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा बहुत सारा रह गया उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी, कोई जरा सी कहते लठम लट्ठा मार दे एक दूसरे, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास के हे भगवान ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते लठन लट्ठा हो जा मार डाल है, अकाल मृत्यु हो नगरी है, कुछ दया करो रक्षा करो, कारण बताओ कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण जी बोले ऐसा करो, सारे नर यादव छोटे छोटे बच्चे नवजात लड़का भी हो ना नर ओनली मेल सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना में स्नान करो, स्नान करने से तुम्हारा यह दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननीय थी क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को भी ले गए और वहां जाकर स्नान करने लग गए। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ा थी एक दूसरे की, और जो कढ़ाए का चूर्ण लोहे का चूर्ण बनाकर डाला था उसके एक घास उग गया तीखे पत्तों वाला, जैसे डाब होती है कुछ कुसा जैसा लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते हुए उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के शराब के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने और एक दूसरे का मारो, वो तलवार का काम करे गर्दन कटके नारी पड़ जाए, वो 56 करोड़ यादव आपस में कटके मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला जी सारे कटके मर गए, आप तक होते शराब खत्म हो जाएगा, ये सारा कुल नष्ट हो गया। वहां तो विष्णु पुराण में लिखा है श्री कृष्ण जी गए और उन मुसल पाड़ के हुए उसने भी रखे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बड़के मारे, जिसकी पूजा करें जिसका पुत्र था उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया, सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सके, उसमें इतनी ताकत थी 50% पावर खींच लेता था बाली, इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो वैसे नहीं सामने नाड़ा, वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह काटा तीर ठोक दे, जब 7-8 तीर मारे जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप कर मेरा के रोला था, मारा भाई भाइयों का जगदा था, और फिर लड़ना था सूरवीर थे आमने सामने आते, आपको पाप लग गया, आपने बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा, श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे और वो ये बाली एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया कोई खाद्य पदार्थ समझ गया वस्तु समझ गया, और वह मछली पकड़ ली उसने उस शिकारी ने बालिये ने, उसने जब वह काटी मछली तो उसमें चपकीली धातु निकली, वो ले गया सुनार के पास, उन्हें सोची कोई चांदी दिखा, सुनार बोला लोहा बहुत गजब का है चांदी नहीं है, लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यू तीर बना दे मेरा जहर में बुझा के, इसको विशेष रखूंगा अलग से, कोई भयंकर जानवर आ गया शेर शार तो उसको मार दूंगा अपने जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का जहर में बुझवा कर पॉइजन में पॉइजन युक्त करवा लिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारे दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला, और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवार सामने दिखाई देता उसमें पद्म था और पद्म चमक रहा था खूब, उसकी रोशनी होती है पद्म की जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस जुर्मट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, तो अच्छी खासी बढ़िया सी छाया थी, आराम से वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है, इधर से जाऊंगा तो भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त जहर से बुझा हुआ तीर चला दिया, तो पैर में लग गया आकर सीधा उस निशान पे पदम के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहे, मर गया रे, मार दिया रे, किसने मार दिया? तो वो शिकारी घबरा गए, तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया और मैंने सोचा यू आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ, मैंने सोचा ये मृग की आंख से और यू तो जहर से बुझा हुआ तीर था, मालिक बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले, भाई कोई बात नहीं, यू तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बादिया बोला, हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब, क्या बदला हो सकता है? तब श्री कृष्ण जी कहते, भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था, उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे, तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा, वैसे नहीं मार सकता था, वो मेरे से गलती बनी थी, धोखे से मारा तेरे, आज तूने भी मुझे धोखे से मार दिया, मैंने अपना बदला दे दिया, अब तू जा और हो सके तो पांडवों को बता दे जाके, मेरे रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे हो गया, सारा यादव को लड़का मर गया, श्री कृष्ण भी अंतिम सांस गिरे। इतने में कुदरती सारा खेल काल का, वो कुदरती आगे पांचों पांडव कुशल मंगल पूछने के लिए रिश्तेदारों में यहां जाते रहते हैं। पता चला नगरी सारी कटका मरी पड़ी है, इधर उधर खोजा, उस बालिये ने बता दिया, उस पार दिन शिकारी ने बता दिया, आप किसने खोज रहे हो, कौन हो? वो बोले, हम पांडव हैं, श्री कृष्ण के हम रिश्तेदार हैं, और ये तो नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी ना पाया, उसने बता दिया ऐसे उस वृक्ष के नीचे पड़ा है, वो आपने ना बताई, गलती के देखो कितने नौका कहो तो कैसे गया, वो वहां आ गया। तब तो श्री कृष्ण जी से उन्हें पूछा, जी के कारण हो गया? तक भाई ऐसे ऐसे बच्चा ने मजाक कर दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, या तो होन हार थी और होनी थी, अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के, मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है, ये मेरी अंत समय की बात सुन लो, तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय में जाकर तप करके शरीर ने समाप्त कर दो, तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे है, तेरे दोनों हाथ में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया था राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला, भगवान आप पश्चात ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी, जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के, हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है, तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है, उसका समाधान आपने बताया अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया अरबों रुपये लाकर, आज आप वो पाप फिर बता रहे हो, हे भगवान, जब क्या कह रहे थे जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया। ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया। मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा। एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर मेरा, तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। ये भगवान आपको हो, हिमालय चले जाओ, रात छोड़ जाओ, ये कोई सब लड्डू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा। ऐसा धोखा आपने करा क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता, भाई मुझे नहीं पता वो क्या हो यार, क्या नहीं यार, मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला, अर्जुन इस समय ये बात ना करे। बोलिया तो हमारे भाग में था, हो गया। श्री कृष्ण बोला, या कोई नर यादव नहीं बचा है, लेडीज हैं केवल, इनको ले जाओ, इनकी रक्षा करो, अपने साथ ले जाओ वहां पर, या इनको जंगली लोग दुखी करेंगे, इनकी इज्जत लूटेंगे, ले जाना, और मेरे शरीर को फूंक के बॉक्स में डाल दियो, बॉक्स में लकड़ी के में। तो उन्होंने ऐसा किया, फूंक के बॉक्स में डाल दिया, उसको दरिया में बहा दियो। तो बच्चों ऐसा ही किया गया। अब चारों पांडव तो आ गए, और अर्जुन की ड्यूटी लाए तुम सब लड़कियों को लेकर, औरतों को सर आ जाना। तो लेकर अपने घोड़े खच्चर उन्हें बैठा बठू के चल पड़े। रास्ते में बिल्ला ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, अर्जुन के साथ युद्ध करे, अर्जुन पिटा, अर्जुन पर वो धनुष उठा भी कोने, जिस तरह महाभारत के युद्ध में लाखों आदमी मार दिए थे, उठा नहीं उससे, जो खड़ा खड़ा पिटे। वो क्या करा उन दुष्ट लोगों ने, कुछ तो औरतों को ले गए, धन लूट ले गए, और थोड़ी बहुत बची उनको लेकर अर्जुन अपने घर आ गया, वहां इंद्रप्रस्थ आ गया। फिर वो कोस रहा है श्री कृष्ण को, कितने सारे धोखा करा हमारे साथ, नाश करवाना था, युद्ध करवाया, जब तक मेरे में ताकत देती एक मारू था, दस मरे थे, और आज मेरा हाथ भी ना उठा, धनुष तो दूर की बात है। गीता में ये काल कहता है कि मैं बलवानों का बलवान, बुद्धिमानों की बुद्धिमय ही हूं। वह तो शक्ति देती नाश कराने में, वह छीन ली वापस। ऐसे धोखेबाज भगवान की भक्ति करके हमने असंख्य धनु नष्ट कर दिया बच्चों। अब बताओ, अब सुनो इस कथा का निष्कर्ष। ना तो पांडवों को स्वर्ग मिला, नरक में पड़े, ना वो राज रहा, और जैसे किसी ने श्राप दे दिया, जो तीन ताप के अंतर्गत कष्ट होता है, वो तीन ताप का कष्ट भी श्री कृष्ण जी से समाधान नहीं हुआ, पहले कह दिया कि इसको घिसा के सारे कढ़ाई को, कपड़ों को फूंक कर उस चूरे को जमुना में डाल दो, तुम्हें ये दुख नहीं होगा, दुर्वासा का श्राप कष्ट नहीं देगा, वो सारा कर दिया। फिर बोले कि उसमें स्नान कर लो, जमुना में नहाने से सारा श्राप कट जाएगा। वो बेचारे नहा भी लिए, वो श्राप तो कटा कोई ना, वो कट कर मरी है। तो ये नकली जितने संत हैं नो दुखा दे रहे तुम्हारे साथ, वह ऐसा चढ़ा दो, वहां स्नान कराओ, ऊपर भी में नहा लो, कुंभ का मेला बड़ा पर भी में नहा लो, मुक्ति हो जाएगी, है उस तालाब में नहा लो, तीर्थ में, वहां मुक्त हो जाएगा। ये नो विरान मट्टी करियर कुछ होना जाना नहीं, तुम कौन राम का जप तेज आपम, ताते कटे ना तीनों तापम। अब क्या बताते हैं, ऐसे भरम न भूलो लोई, इनकी ओटन उभरे कोई, या दो छप्पन कोटि सहारे, करी ठगोरी छन मोरे, पात तो त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी, अष्ट सिद्धि नौ निधि मन के पोए, ਜਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਰੋਏ, ਨੌ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗਿਨੀ ਸਭ ਡੈ ਕਾਏ। ਕਿਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਨੁਆ ਭਗਵਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗਿਨੀ ਸੰਗ ਖਿਲਾਨਾ, ਚੌਦਹ ਲੋਕ ਰਸਾਤਲ ਕੂਟੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਬਿਰਲੇ ਛੂਟੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤ ਭਗਤਮਤੀ ਕੇਵਲ ਇਨਕਾ ਬਚਾਅ ਹੁਆ। ਯਮ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਧਾਮ ਨਰੇਸ਼ਾ, ਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਬੰਧੇ ਕੇਸਾ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਲੋਟੀ ਵਿਧਿਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਬਦਨੀ ਕਾਮਨੀ ਨਾਰੀ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬੋਰ ਪੜੇ ਹੈ ਚਾਰੋ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਗ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗਧਾ ਬਣੇ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰੇ ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬੋਰ ਪੜੇ ਹੈ ਚਾਰੋ ਖਾਨੀ। ਸ਼ਿਵ ਪਰ ਲੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਜਮ ਕਿਮ ਕਰ ਤੋੜਤ ਹੈ ਛਾਤੀ। ਬੱਚੋ ਸੁਰਗ ਬੈਕੁੰਠ ਮਠ ਸਭ ਲੁੱਟੇ, ਬਿਸਤ ਬੀਜ ਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕੀ ਸੋ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਤਰਮਬਾਜੀ ਸਭ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਕੀ, ਆਪਕੋ ਇਹ ਅਮਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਮਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸਕੋ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਾਲਿਕ ਆਪਕੋ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।